एक रिवायत आती है अम्मार बिन यासिर के बारे में कि उन्होंने सहाबा कराम की इमामत कराई तो बहुत मुख्तसिर नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद लोग उनके पास आ गए, उन्होंने कहा आपने बहुत ही मुख्तसिर हमें नमाज पढ़ाई है। तो फरमाया हाँ, इसलिए कि इसमें मैंने एक वो दुआ मांग ली है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से मैंने सुनी थी। तो ये कह के वो चल दिए, एक शख्स उनके पीछे हो लिया और पूछा वो कौन सी दुआ है, वो कौन से अल्फाज हैं जो आपने अपनी नमाज में कहे, मैं वो सुनना चाहता हूँ जो नबी अलैहिस्सलाम की जुबान मुबारक से आपने सुने। जानते हैं उन्होंने क्या दुआ बताई, और इस दुआ के हवाले से मैं आज आपको कुछ चीजें समझाना चाहती हूँ। थोड़ी सी लंबी दुआ है लेकिन बड़ा ही कुछ है इसके अंदर, बहुत कुछ है, सब कुछ ही मांग लिया गया। तो दुआ क्या है, अल्लाहुमा ए अल्लाह बी इल्मी कल गैब, इस वजह से कि गैब का इल्म तेरे पास है, वह कुदरती का अलल खल्क और मखलूक के ऊपर तेरी कुदरत है, आहीनी मुझे जिंदा रख, मा आलिम तल हयात खैरली, जब तक कि जिंदा रहना मेरे लिए बेहतर है। पता नहीं मुझे क्या पता कब तक मेरे लिए जिंदा रहना बेहतर है और आगे क्या फितने आ रहे हैं या क्या और चीजें होने वाली, या अल्लाह जब तक मेरे लिए जिंदा रहना बेहतर तब तक मुझे जिंदा रखना, वह तवफ्फानी और मुझे मौत देना, इदा आलिम तल वफा तखैरली, जब तुझे पता है कि मेरी वफात मेरे लिए बेहतर है। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह व अस्अलुका, मैं तुझसे सवाल करता हूँ, खशियतका तेरे डर का तेरे खौफ का, कब फिल गैबी व शहादा, यानी गैब में और हाजिर में। क्या मतलब है कि जब सब हूं तब भी मुझे सिर्फ तेरा डर हो, और जब अकेले में हूं मैं तब भी मुझे सिर्फ तेरा ही डर हो। ये नहीं कि लोगों के सामने तो अल्लाह से डरने की बहुत एक्टिंग हो और अकेले में कोई पता ही नहीं। अल्लाह मुझे अपना ऐसा डर दे कि मैं हाजिर और गैब के अंदर तेरे से ही डरूं, क्योंकि कई लोग अकेले में अल्लाह से नहीं डरते और कई लोग तो लोगों के सामने भी नहीं डरते, उनको कोई परवाह ही नहीं। वह अस्अलुका कलिमत अल हक फिर रिदा वल गदब, और ऐ अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूं किस चीज का, हक बात कहने का, कब हक बात कहना कब मुश्किल होता है, खुशी के वक्त भी और गुस्से में भी, यानी जब इंसान खुशी में खुश भी होता है, बहुत ज्यादा खुशी भी हो जाए तो तब भी हक बात कहना, वो हक बात नहीं कहता, बस जो अपनी मनमानी होती वो कहता है, और जब गुस्सा भी आता फिर तो पता ही नहीं चलता कि क्या कह रहा है, फिर हक बात नहीं कहता, फिर जो गुस्से के अंदर उसके मुंह में आता है वो बोल देता और ना हक बातें बोलता। तो अल्लाह ताला मैं गुस्से में भी हूं ना मेरी जुबान से हक बात ही निकले, मैं खुशी में भी हूं तब भी मेरी जुबान से हक बात ही निकले। वह अस्अलुकल कस्द फिल फकरी वल गिना, और अल्लाह मुझे बैलेंस्ड रखना, बैलेंस रखना मुझे कब, फकीरी में भी और गिना में भी, यानी जब मेरे पास कुछ नहीं है तब भी, और जब मैं गनी हो जाऊं मेरे पास दौलत हो तब भी। इसलिए कि बहुत सारे लोग जब उनके पास कुछ होता है, कोई माल है, नेमते हैं, तो बड़ी जल्दी बैलेंस खो देते हैं, इसराफ में पड़ जाते हैं, तबजीर में पड़ जाते हैं, फजूल उड़ाने लगते हैं और अल्लाह ताला को नाराज करते हैं। और इसी तरह बाज लोग फकर की हालत के अंदर कुफर तक पहुंच जाते हैं। वह अस्अलुक नईमन ला यंफदु, एला इतनी प्यारी ये बात है ना, एला मुझे वो नेमते देना जो कभी खत्म ना हो, मैं तुझसे उस नेमत का सवाल करता हूं जो कभी खत्म ना हो। अल्लाह इसके अंदर तो नेमतों के जवाल से भी इंसान ने पनाह मांग ली, क्योंकि वो ऐसी नेमत का सवाल करता है जो खत्म ना हो। या अल्लाह वह अस्अलुका कुर्रात आयनिन ला तनकतियो, अल्लाह आंखों की ऐसी ठंडक हो जो कभी कता ना हो, कभी जायल ना हो, कभी खत्म ना हो। ये चीजें तो असल में तो ये जन्नत में ही मिल सकती। दुनिया में बहुत मुश्किल है। वह असअलुक रिदा बाद अल्कदा, अल्लाह जो भी तू मेरे बारे में फैसला करे ना, फिर मुझे उसमें राजी भी कर देना। ये नहीं कि मैं उसके बाद गिले शिकवे शिकायतें और अस्तगफिरुल्ला गुमराही में ना पड़ जाऊँ। जो भी मेरे तकदीर के फैसले उन पे मुझे राजी भी कर देना। वह असअलुक बरदल आयश बाद अल्मौत, अल्लाह मौत के बाद मुझे ठंडक अता फरमाना, अल्लाह ताला मुझे सुकून अता फरमाना। क्योंकि बाज दफा इंसान सोचता है कि मौत के बाद ही अब मुझे चैन आएगा, सुकून यहाँ पे तो है नहीं, लेकिन मौत के बाद भी चैन ना आया तो किधर जाएंगे, मौत के बाद भी चैन नहीं आता। तो अल्लाह उस वक्त तो मुझे आराम दे देना, सुकून दे देना। परदलाइश व असअलू का, और ये आप देखें असल बात जो है, लज्जत नजरी इला वजहक, अल्लाह अकबर, मैं तेरे चेहरे की तरफ देखने की लज्जत का सवाल करता हूँ। स्वीटनेस ऑफ योर साइट, उसकी भी एक स्वीटनेस है, लज्जत है तेरे चेहरे की तरफ देखने की। और शौक ही ला लिकाए, और शौक तेरी से मुलाकात का, इसका भी सवाल करता हूँ। लेकिन गैरा दर्रा मुदर्रा थे वाला फितना थे मुदिल्ला थे, लेकिन अल्लाह किसी दर्र के साथ नहीं और किसी फितने में मुबतला करके नहीं। ये बहुत अहम बात है, इसलिए कि देखें हमें किससे मिलने का शौक होता है और किसको देखने का शौक होता है। सोचिए आपको किससे मुलाकात का शौक है, बहुत ज्यादा शौक। कई लोगों को एक्टर से मिलने का शौक होता है, कहीं को स्पोर्ट्स वाले लोगों से, कई और सेलिब्रिटीज, और उनकी एक झलक देखने के लिए वो इतनी महंगी टिकटें लेते हैं, आगे की सीट लेते हैं, बस एक दफा नजर आ जाए, और दूर से भी नजर आ जाए, इतने खुश होते हैं, उनके साथ एक सेल्फी बन जाए तो फिर तो क्या ही बात है, और उनका ऑटोग्राफ हो जाए तो फिर तो बहुत ही बड़ी बात है। तो जो जिसको महबूब है उससे मिलना उसके लिए इतनी बड़ी बात हो जाती है कि जब उसको पता चलता है कि मेरी फलां से मुलाकात होनी है तो उसको रात को नींद भी नहीं आती कि मेरी उससे मुलाकात होने वाली है, सुबह मैंने उससे मिलना है। और उसकी एक झलक सिर्फ दिखनी होती है थोड़ी देर के लिए, और उसके लिए वो क्या क्या नहीं करता, कितना उसको शौक होता है। मगर सवाल आज आपसे ये है कि क्या कम अज कम इतना शौक अल्लाह ताला से मिलने का भी है कि मेरी जिंदगी का हर दिन जो गुजर रहा हो तो मेरे अंदर ये शौक हो कि मेरे रब मेरी तुझसे मुलाकात कब होगी, कब मैं तुझे देखूंगी। हर एक को अपने महबूब से मिलने का शौक होता है ना, और उसको देखने का शौक होता है। आवाज भी सुन ले तो कहते हैं देखेंगे कब, क्योंकि देखने की अलग लज्जत है। अल्लाह तेरा कलाम पढ़ तो रहे हैं, तुझे देखूंगी कब। क्या हम ऐसी तड़प रखते हैं अपने अंदर? इससे ज्यादा तो हमें इंसानों से मिलने का शौक होता है, इससे ज्यादा तो हमें उनकी झलक देखने का शौक होता है। लेकिन अगर हम अल्लाह ताला को पहचानते होते ना, तो हम यकीनन उससे मिलने का और उसको देखने का इतना शौक रखते कि हर शौक के ऊपर ये शौक गालिब होता। आज हमारे शौक क्या हैं? क्या चीज के शौक हैं? हमने चूंकि अल्लाह ताला को पहचाना नहीं ना, तो हमारे शौक इतने घटिया हैं, इतने हकीर हैं, बहुत ही गिरे पड़े शौक हैं। ये कैसे मैं कह रही हूं? क्योंकि हम में से किसी का शौक क्या है? कपड़े 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 कपड़े, सारा दिन बस कपड़ों की शॉपिंग हो रही, कपड़ों की शॉपिंग। कपड़े ना हो गए क्या हो गया? किसी को पैसे का शौक है तो उसके दिमाग में पैसा ही सवार रहता है, वो एक जॉब से दूसरी, दूसरी से तीसरी, एक बिजनेस शुरू किया उस पे से इतना आ रहा है, दूसरा शुरू कर लो, वो और चाहिए और चाहिए और चाहिए। किसी को गाड़ियों का शौक है, उसके दिमाग पे जुनूनी गाड़ियों का सवार रहता है। वो गाड़ियों को ही हर वक्त देखता रहता है। हमने कितने घटिया शौक पाले में, हमारे शौक भी कितने मामूली हैं और उन चीजों के शौक हैं जो कोई वैल्यू नहीं रखती, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमारा रब कौन है। अगर हम उसको पहचानते ना, तो हम इन चीजों के शौक तो हमारी जिंदगी में होते ही ना। हमें वो जो देखें, जिसने आला चीज चखी हो ना, उसको पता होता है कि ये तो घटिया सी चीज है। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने प्योर पानी नहीं पिया, किसी चश्मे का प्योर पानी, बहुत उसका मस्त टेस्ट डिफरेंट होता है, और एक आम जो नल का पानी होता है, और जो बिल्कुल ही नालों वगैरह का पानी होगा उसका टेस्ट बिल्कुल खराब सा होता है। तो अगर आप एक दफा वो अच्छा वाला पानी पी लेते ना, तो आपको कोई दूसरी बोतल में दूसरा पानी देगा ना, तो आप फौरन पहचान लेते हैं, आप कहते हैं ये तो वो है ही नहीं, हाँ ये कैसा पानी है, क्योंकि तो आपने अच्छी चीज चख ली। लेकिन हमने कभी अपने रब की मोहब्बत को चखा ही नहीं, तो क्या शौक होगा हमें उसको देखने का और उससे मुलाकात करने का और ये ख्वाब देखने का। इंसान ख्वाब किसके देखता है, जिससे मोहब्बत करता है ना, तो फिर ख्वाबों में भी यही आता रहता है, उससे मुलाकात हो रही है, उसको देख रहे हैं, उसके पास हैं। आपको एक शौक की बात बताऊं, शौक देखना है ना, तो बीबी आसिया से सीखे शौक क्या होता है। रब्बी बनी लिया आइंदा का बैतन फिल जन्ना, जब फिरौन इतने जुल्म ढा रहा था ना, तो उन्होंने ये नहीं कहा अल्लाह मुझे जन्नत में ले जा बस, रब्बी बनी लिया आइंदा का बैतन फिल जन्ना, अल्लाह अपने पास पहले ये कहा, रब्बी बनी लिया आइंदा का बैतन फिर घर, पहले अपने पास की बात की, अल्लाह घर भी हो तेरे पास हो तो तब तो मजा है, तुझसे दूर नहीं जन्नत में। अल्लाह हू अकबर, फिर वो तड़प लग जाती है, फिर शौक लग जाता है, और ये एक्शंस में नहीं होता, ये दिल में होता है, एक शोला जल रहा होता है। तो इस दुआ में यही मांगा गया कि इस दिल को अब चैन कहाँ आना है, तो उससे मुलाकात के बगैर, ए अल्लाह कहीं ये जो शौक है ना, ये मेरा मांद ना पड़ जाए, ए अल्लाह कहीं ये शोला जो अंदर जल रहा है ना, ये बुझ ना जाए, अल्लाह तेरे दीदार की जो तड़प है ये कहीं खत्म ना हो जाए। अल्लाह मैं तुझसे इसका सवाल करती हूँ, अल्लाहुम्मा ज़य्यन्ना बि ज़ीनतिल ईमान व जअलना हुदात मुहतदीन, अल्लाह मेरे दिल को ईमान से जीनत दे दे। इसकी ब्यूटिफिकेशन क्या है, दिल की ब्यूटिफिकेशन नहीं, ये नहीं है कि इसके अंदर मोहब्बत हो, पैसे की, औलाद की, फलां चीज की, फलां चीज की, बस इससे दिल भरे हुए हैं और यही मोहब्बतें हैं और यही चीजें हैं जो हर वक्त सोचों पे सवार है। मेरा दिल ब्यूटीफुल किससे होता है, ईमान से, और मुझे हिदायत याफ्ता में कर देना। इमाम इब्ने तैमिया फरमाते हैं कि अगर कोई अल्लाह ताला को जान लेना, तो उसका असर वो अपनी जिंदगी के हर लम्हे में महसूस करेगा, और वो फिर अल्लाह ताला के बारे में और जानने की कोशिश करता रहेगा, और ज्यादा उसको नहीं फिर चैन आता, वो और जानने की कोशिश करता है, और जानने की कोशिश करता है, हत्ता के उसके सोने, जागने, खाने, पीने और हर अमल में वो महसूस करता है ये इस चीज को, कि महसूस करता है कि मैं अल्लाह ताला की पहचान को महसूस करने लगता है। तो हमारी ये जो आज के शौक है ना, वो इस वजह से हैं कि बेहतर चीज को हमने पाया ही नहीं, अल्लाह ताला का शौक कभी दिल में रखा ही नहीं। अल्लाह ताला सूरह इन्फितार में फरमाता है ना, या अय्युहल इंसान मा गुर्रक बिरब्बिकल करीम, ए इंसान, ये नहीं फरमाया या अय्युहन नास, या अय्युहल इंसान, ए इंसान, जैसे कि अल्लाह ताला ना एक एक इंसान को पकड़ पकड़ के एक सवाल कर रहा है, वो चाहे काफिर है, चाहे मुसलमान है, चाहे अल्लाह का फरमा बरदार है, चाहे नाफरमान है, मर्द है, औरत है, एक एक इंसान को अल्लाह ताला पूछ रहा है, अल्लाह अकबर क्या पूछ रहा है। मा गर्रका बी रब्बी कल करीम, किस चीज ने तुझे धोखा दे दिया तेरे करीम रब के बारे में, किसने तुझे फूल बना दिया, किसने तेरे साथ झूठ बोल दिया, किसने तुझे मिस गाइड कर दिया कि उस करीम रब से तुझे इतना दूर ले गया कि तू मुड़ के ही नहीं आता। ये उनके लिए जो अल्लाह ताला से दूर चले गए, उन्होंने अपने शौक कुछ और बना लिए, अब उनको शौक है इस चीज का, उस चीज का, उस चीज का, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमां पर, फिर भी कम निकले, हर एक ख्वाहिश खत्म होती, दूसरी दूसरी से तीसरी। अल्लाह ताला के साथ मुलाकात की, उसको देखने की लज्जत की, इसकी तो कभी ख्वाहिश आती ही नहीं, वो तो कहीं पीछे ही है, इसलिए कि कभी सोचा ही नहीं। किसने तुझे दूर कर दिया इतना दूर कि तू मुड़ के ही नहीं देखता, तू नाफरमानियों में इतना पड़ गया, तूने अल्लाह ताला को ऐसे भुला दिया, तू इतना गफलत में पड़ गया, तुझे दुनिया ने ऐसा अपने अंदर मशगूल कर ली, मुड़ के ही नहीं आता तू। किस चीज ने तुझे मशगूल ऐसा किया, किस चीज ने तुझे धोखे में डाल दिया, किस चीज ने अल्लाह ताला के बारे में तुझे धोखे में डाल दिया कि तू उसको छोड़ के जो करीम रब है कहीं और ही चला फिर रहा, कहीं और ही गुम है, तेरी सोचे गुम, तेरी जिंदगी गुम, तू किधर चला गया उस रब को छोड़ के। इस सवाल में एक हैरत है, कैसे कर सकता है इंसान कि वो अल्लदी खलका का फसवा का फादल, जिसने तुझे पैदा किया, जिसने तुझे संवारा, तेरी नोक पलक संवारी, उसको छोड़ के तू चला गया। तो ये उन सब के लिए है जो अल्लाह ताला से दूर है, उनको पुकार रहा है अल्लाह ताला और उनसे पूछ रहा है ये सवाल। माँ बाप को भी कोई औलाद सताए ना और उनसे दूर हो जाए तो वो कहते हैं चले जा मेरे आगे से, अब मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। मगर अल्लाह ताला अपने से दूर जाने वाले को पुकार रहा है, बुला रहा है। सोचे तो सही, रब्बे कायनात, कायनात का मालिक, वो इतनी छोटी सी या हकीर सी मखलूक, क्या चीज है इंसान, इसकी क्या हैसियत है इस कायनात में, इस छोटी सी मखलूक, इस छोटे से जर्रे से भी छोटी चीज है ये इस कायनात में, जर्रे से भी छोटी चीज, एक पार्टिकल की भी कोई हैसियत होती तो उससे भी ज्यादा छोटा है। उसको वो रब जो कायनात का खालिक है, मालिक है, चलाने वाला है, वो पुकार के कह रहा है तेरा तो रब बड़ा करीम है, रब के अंदर एक माना है पैदा करने वाला, एक माना है पालने वाला, एक माना है मिल्कियत रखने वाला, वो तेरा मालिक भी है, उसने ही तुझे पैदा किया है, उसी ने तुझे संवारा, तुझे यहां तक पहुंचाया, तुझे पाला भी है, तू उससे ही भाग रहा है दूर, किसने तुझे धोखे में डाल दिया। और इंसान अल्लाह ताला से ही दूर भागता है, कहता है कहीं भाग जाऊं ना, अल्लाह का नाम लेना पड़े ना कुछ, वो इतना दुनिया में मगन है ना, उसने अपनी खुशियां भी इसी दुनिया में ढूंढ ली और उसके गम भी यहीं किए, अल्लाह ताला की तरफ आने की फिक्र ही खत्म हो गई, और ये तो दकियानूसी बातें लगने शुरू हो गई, दीन क्या है, मौलवी बन जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सोचो तो सही, तुम किस रब को पीछे कर रहे हो, वो जो करीम है, जानते हैं आप करीम का माना भी जानते हैं, करीम इतना प्यारा अल्लाह ताला का नाम है, इतना प्यारा नाम है करीम, वो होता है जो बगैर किसी बदले के और बगैर सवाल के देता जाता है, देता ही जाता है, इनायत करता जाता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है तेरा रब तो बड़ा करीम है, और भी मैं आपको 20 के माने बताती हूँ, एक अभी बताया करीम का माना। सोच तो सही कि उस करीम रब से तुझे किसने धोखे में डाल दिया कि तू उसको छोड़ के बजाय कि उसकी तरफ ही आता, क्योंकि वो करीम है, वो लविंग है, वो जेनरस है, उसकी तरफ आना चाहिए था ना, उसको ही छोड़ दिया तूने। और ये फरमा कर अल्लाह ताला ने गोया उसके लिए वापसी का दरवाजा बता दिया कि वापसी का दरवाजा खुला हुआ है। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया दफा हो जा, अगर तू चला गया तो जा, अब मत आना वापस, वो फिर दरवाजे बंद नहीं कर रहा, अभी भी मेरी तरफ वापसी का रास्ता खुला हुआ है। दूर ना जाना, वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ। वो क्योंकि वो बड़ा करीम है, वो अभी भी तुम्हें अपनाने को तैयार है। वो पता है एक रिवायत में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में दो आदमी थे, उनमें बड़ा भाईचारा था। उनमें से एक गुनाह करता रहता था, दूसरा इबादत करता रहता। जो इबादत में मेहनत करता था ना, जब दूसरे को गुनाह करते देखता था, कहता था बाज आ जा, बाज आ, बाज आ जा, तो वो कहता था मेरा मामला तू मेरे रब पे छोड़ दे, मेरे ऊपर तू निगरान नहीं है। तो पहला आदमी कहता था खुदा की कसम, अब अगर तूने किया ना, अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया दोनों की रूहें कब्ज कर लो, दोनों अल्लाह ताला के सामने हाजिर किए गए। अब अल्लाह ताला ने इबादत करने वाले से फरमाया, क्या तुझे मेरे बारे में पता है कि मैं किसी को नहीं माफ करूंगा? क्या ये तेरा इख्तियार है या मेरा? अल्लाह अकबर। और अल्लाह ताला ने उसके लिए जहन्नुम का फैसला कर दिया। और दूसरा इंसान जो गुनाहगार था, अल्लाह ताला ने फरमाया जा मेरी रहमत से तू जन्नत में दाखिल हो जा। आप इससे आप अंदाजा करें कोई इंसान अपने तौर पे अल्लाह ताला के ऊपर कैसे ये लगा सकता है, बस अल्लाह ताला ने इनको तो माफ ही नहीं करना, बस अब खत्म हो गया इनका तो मामला। वो तो हर हाल में इंसान को कहता है तू पलट आ, तू वापस आ जा, मेरे दरवाजे खुले में। और किसी को भी इजाजत नहीं देता कि वो लोगों को कहे अब तुम्हारी माफी नहीं होगी, बस कबीरा गुनाह तुमने कर दिया, अब तुम काफिर हो गए, अब तुम्हारी माफी है ही नहीं। ये किसी को इजाजत नहीं कि वो ये बोले अल्लाह ताला के ऊपर, क्योंकि वो रब करीम है। वो फरमाते हैं मैंने तो तुझे पैदा किया, अल्लादी खलका का, कितना बिल लिया तुमसे, तुम्हें ये सारे ऑर्गन्स फ्री में मिल गए, कितना बिल लिया? कभी कोई बिल मांगा इसका? आंखों का बिल आप देते हैं, सुनने का बिल देते हैं, हाँ अपने घरों के देते हैं, बिजली के देते हैं, पानी के देते हैं, आंखों के, कानों के, हाथों पैरों के बिल कितने देते हैं आप? हाँ उसने तुम्हें बैलेंस किया, आधा लाख बैलेंस किया, इसका कितना बिल आता है आपको? रिस्क दिया, पाला पोसा, कितनी दुआएं की थी आपने सब इस सब चीजों को पाने के लिए, कितनी की थी? दिल के धड़कने के लिए, फेफड़ों के काम करने के लिए, मैदे के काम करने के लिए, सांस के आसानी से चलने के लिए, आंखों को के देखने के लिए, कानों के सुनने के लिए, कितनी दुआएं मांगी आपने? ये सब फ्री में मिल गया, इसका सवाल नहीं किया। बिन मांगे जिसने इतना कुछ अता कर दिया, तो उसे मांग लोगे तो कितना देगा, सोचें। क्योंकि वो करीम है, वो इतना जेनरस है, वो अता करने वाला है। करीम वो जात होती है जो अता करता है और उसको परवाह नहीं होती। वो कोई नाफरमान को दे रहा है, काफिर है, मुसलमान है, इताअत गुजार है, नहीं है, उसको नहीं परवाह, वो सबको दे रहा है, हमेशा वो देने वाला है, उसकी अता कभी रुकती नहीं। अल्लाह अकबर, उसके एहसानात कभी खत्म ही नहीं होते, और बिन मांगे देता है। अल्लाह अकबर। और फिर करीम का माना है वो जात जो अपने इनामात और एहसानात बंदों की तरफ से कबूल करने पे खुश होता है, यानी बंदे जब उसकी इनामात पाते हैं ना, लेते हैं, तो वो इससे भी खुश होता है कि ये मेरे इनामात पा रहे हैं, ले रहे हैं। सुभान अल्लाह, हम अगर किसी को देते हैं और वो बड़ी खुशी से ले ले आगे बढ़ गए, तो हम कहते हैं इसको तो शर्म नहीं है, देखो एक दफा भी इसने ना नहीं करा, फौरन पकड़ लिया। अल्लाह ताला खुश होता है बंदे उसके इनामात को कबूल करते हैं, और वो जात है अल करीम कि नेकी की तौफीक भी खुद ही देता है और नेकियों पे तारीफें भी करता है और अजर भी दे देता है। सुभान अल्लाह, तौफीक तो उसी ने दी ना। अगर आज मैं और आप जागे बैठे में, तो हमारा कौन सा ऐसा कमाल हो गया भाई? तारीफ तौफीक देने वाला अल्लाह ताला है, और फिर उसके ऊपर वो नवाजता भी है। सुभान अल्लाह, अल्लाह हु अकबर। और करीम वो है ये उसकी नेमते हर एक के लिए, चाहे कोई अमीर है या गरीब है, बादशाह है या फकीर है। और अल करीम वो जात है कि जो उसको भी देता है जो उसकी शान में गुस्ताखी करता है, उसको भी देता है जो उसके अहकाम को तोड़ता है। अल्लाह अकबर, ये जुबानों से ही लोग अल्लाह ताला के बारे में गलत बातें कर रहे होते और कुफर बोल रहे होते और शिर्क कर रहे होते, फिर भी उनको अता करता जाता है ना, कभी रोकता थोड़ी है। और अल करीम वो जात है जो मांगने से भी पहले अता कर दे, अभी इंसान मांगे भी ना और उसको अता कर दे। अल्लाह अकबर। और वो अल करीम वो जात है कि जो उसके पास पनाह ले लेता है उसको कभी नहीं छोड़ता, और जो उसके आगे इल्तजा करता है उसको बेयारो मददगार और बेआसरा नहीं छोड़ता। इसीलिए हम कहते हैं ना, या अकरमुल अकरमीन, या अकरमुल अकरमीन, ए करम करने वालों में सबसे ज्यादा करम करने वाले। अल्लाह अकबर। और करीम वो होता है जो बिला वजह ऐसे ही गुस्सा नहीं करता, ऐसे ही सजाएं नहीं दे देता किसी को। अल्लाह अकबर। तो वो तो तुम्हारा रब बड़ा करीम है, ऐसे रब से तो इंसान को मोहब्बत होनी चाहिए, ऐसे रब की तरफ तो इंसान को बढ़ना चाहिए, ऐसे रब का तो शौक रखना चाहिए इंसान को। एक तो वो मेरा रब है, मेरा खालिक, मेरा मालिक, मेरा पालने वाला, और ऊपर से करीम भी है, इतनी बड़ी सिफत है उसकी, और ये उसने किसी से ली नहीं हुई, और ये टेम्परेरी नहीं है, हमेशा उसकी सिफत है। तो ऐसे रब के लिए तो इंसान को आगे बढ़ के उससे मोहब्बत करनी चाहिए, लेकिन इंसान उसी से भाग रहा है। मा गर्रा कभी रब्बी कल करी, धोखे में पड़ गया और किसी और ही रास्ते पे निकल गया और उस रब को छोड़ दिया। तो बहुत ही ये पावरफुल आयत है, और इंसान को ये समझा रही है कि वापस आ जाओ, अभी भी पलट आओ। देखिए, अगर जहन्नुम की सजा ना भी होती ना, तो उस रब की हमारे ऊपर इतनी एहसानात है, और वो रब ऐसा है कि हमें कभी भी नहीं उसकी नाफरमानी करनी चाहिए थी, कभी भी नहीं। सिर्फ ये नहीं कि जहन्नुम है जिसकी वजह से अब हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह हमें माफ कर दे वरना हम जहन्नुम में जाए, अल्लाह हमें तो तेरी नाफरमानी वैसे ही नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि तू बहुत करीम है यार। अब कितना कुछ उसने हमें बिन मांगे ही अता किया, हमारी नाफरमानियों के बावजूद वो हमसे छीनता नहीं है। तो ऐसे रब की कदर जाने, और ये दुआएं अपनी दुआओं में शामिल कर लें। और अगर आपको ये दुआ जुबानी नहीं भी याद है, तो चलें इसका माना ही आप जहन में रख लें, और इसको अपनी जुबान में, जो भी इंग्लिश है, उर्दू है, किसी जुबान में ये तो कह सकते हैं, अल्लाह मैं तुझसे सवाल करते हैं, तुझे देखने की लज्जत का और तेरे से मुलाकात के शौक का सवाल करते हैं, लेकिन अल्लाह किसी तकलीफ में ना डालना, किसी फितने में डाले बगैर देना, ये सब इतना तो कह सकते हैं ना। अल्लाह मैं तुझसे वो डर मांगती हूँ जो हाजिर और गायब में तुझसे डर हो, और हक का कलमा बोलने की जुर्रत मांगती हूँ। तो इन सारी चीजों को आप जहन में रखते हुए भी तो दुआएं कर सकते हैं कि आप अपनी जुबान में इन्हीं चीजों को मांग लें, और जरूरी ये है कि आपका दिल इसके अंदर लगे कि आप क्या मांग रहे हैं। तो अल्लाह ताला इस दुआ को हमारे लिए भी कबूल फरमाए, और वाकई हमें अल्लाह ताला अपना दीदार अता फरमाए, वो भी हमारी सेकेंडरी चीजों में होता है, इतना कोई शौक तो नहीं है, बस ठीक है वहां पे भी ये भी एक दुआ होनी चाहिए तो चलो वहां पे अल्लाह का ताला का दीदार मिल जाए, लेकिन वाकई शौक तब दिल में आएगा जब आप अल्लाह ताला को पहचानेंगे, और जितनी ज्यादा पहचान होगी उतना ये दिल तड़पेगा उससे मुलाकात के लिए। अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल करे। चलें ठीक है, अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। अल्लाह ताला हमें अपनी मोहब्बत अता फरमाए, और इतनी ज़्यादा अपनी मोहब्बत अता फरमाए कि
कि ठंडे पानी से भी ज़्यादा हमारे दिलों में अल्लाह ताला की मोहब्बत हो, और हर शौक़ से ज़्यादा उससे मुलाकात का शौक हो।